السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. الحمد للہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن نصیب فرمایا. جمعہ کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پہ سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی بیسٹ آف آل دا ڈیز. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت سے جنت میں ڈالا گیا اور اسی دن نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی. یہ مسلم کی روایت ہے. دوسری ایک اور حدیث آتی ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم لوگ اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارے درود میرے پر پیش کیے جاتے ہیں. تو جمعے کے دن، اور ایک روایت میں رات کا بھی ذکر ہے کہ جمعے کی رات اور دن، یعنی آپ جمعے کی رات سے ہی شروع ہو جائیں، جو تھرسڈے کی مغرب سے شروع ہوتی ہے جمعے کی رات، اس وقت سے ہی آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی بہت کثرت کیجیے، کیونکہ درود شریف کے بہت سارے فوائد ہیں اور ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اپنے جب ہم نے نماز کے بارے میں بات کی تھی، تو کہ کیا کیا فوائد ہمیں درود شریف کی وجہ سے ملتے ہیں. تو درود شریف کو اول اپنے ذکر میں رکھیں آج کے دن. اسی طرح جمعے کے دن کی کچھ سنتیں بھی ہیں جو خاص جمعے کے ساتھ ہیں ریلیٹڈ، یعنی ایسی سنتیں ہیں کہ اگر آپ جمعے کے دن ان سنتوں پہ عمل کریں گے تو چاہے آپ یہ کام ایوری ڈے کرتے ہیں، لیکن آج کے دن آپ یہ سوچیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو اسی کام کا آپ کو اجر ملے گا. حالانکہ یہ ہماری اپنی ضرورت کے کام ہے، جیسے سنت کیا غسل کرنا. ہو سکتا ہے آپ ہر دن غسل کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، لیکن آج کے دن آپ کہیں گے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے جمعے کے دن غسل کرنا، اس لیے آج میں غسل کر رہی ہوں. اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہننا، اسی طرح مسواک کرنا. آپ چاہے آگے پیچھے مسواک نہیں بھی کرتے، لیکن اسپیشلی جمعے کے دن ضرور اس سنت کو زندہ کیجیے. ان کے بارے میں آتا ہے، امام احمد کے بارے میں، انہوں نے مسند احمد لکھی نا، جو حدیث کی کتاب ہے، تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث لکھی اس پر عمل ضرور کیا، چاہے ایک ہی دفعہ کیا، لیکن یعنی کوئی حدیث انہوں نے ایسی لکھی نہیں اپنی کتاب میں جو بغیر اس پہ عمل کیے ہوئے لکھی. اب ہم کتنی ساری سنتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کم از کم ہم کبھی تو کریں. چلو رمضان ایسا موقع ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم سارے کام سنت کے مطابق کر رہے ہیں. تو اگر آپ ہر جمعے کو یہ کام نہیں بھی کرتے تو رمضان کے جمعوں میں خاص طور پہ کریں. تو آپ اب صاف ستھرے کپڑے پہنے، مرد ہیں تو خوشبو لگا کے جمعے کے لیے نکلیں، عورتوں نے اگر گھر میں رہنا ہے تو گھر میں خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن باہر نہ لگا کے جائیں. اسی طرح سورت الکہف کی تلاوت کریں اور کثرت سے درود بھیجیں، اور جب جمعے کے لیے جانا ہے تو امام سے پہلے پہنچیں. اول وقت میں پہنچنا انسان کو زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے، جیسے جو زیادہ جلدی جاتا ہے اس کو اونٹ کے قربانی کا اجر ملتا ہے، پھر گائے کی، پھر مرغی کی، پھر انڈے کی. جو بالکل ہی لیٹ جائے، یعنی انڈے کی قربانی، اتنی سی چیز دینے کا ثواب ملے گا. اور جو امام کے آنے کے بعد پھر آیا تو اس کے اب خطبہ شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ انٹر ہو رہا ہے، تو اس کو پھر جمعے کا تو نہیں، پھر بس ظہر کا ہی اس کو ثواب مل سکتا ہے. اپنے قلم رکھ دیتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر کہ کون آ رہا ہے اور کس وقت آ رہا ہے. اس میں جلدی جانے کی کوشش کریں، یعنی کہ ابھی تو 15 منٹ پڑے ہیں، آرام سے ہی جائیں گے. جتنی جلدی جائیں گے اتنا ہی اچھا ہے، اور جلدی چلے جائیں تو وہاں بیٹھ کے سورہ کہف پڑھ لیں. کم از کم آپ کو اتنی بڑی قربانی کا اجر مل جائے گا. آپ دیکھیں اونٹ کی قربانی کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا، کتنی مہنگی ہوتی ہے. تو جتنی بڑی چیز کی قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں اتنی ہی ذرا پہلے چلے جائیں، وہ پھر اس کے بعد گائے، پھر دیکھیں کم سے کم اجر ہوتا جاتا ہے. اور امام کے قریب بیٹھنا بھی سنت ہے، कि इमाम जहां पे वहां पे करीब होके बैठे और खामोशी से खुतबा सुने। तो ये बड़े फजीलत के काम है, इनको कोशिश करें कि जुमा आपका, रमजान का खास तौर पे जुमा ऐसा गुजरे कि जो हमारे लिए बहुत सारे अजर व सवाब का बाइस बन जाए। और जुमे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर वापस आते थे तो 2 रकअतें पढ़ा करते थे। तो अगर आप मस्जिद में पढ़ें तो जुमे पढ़ के तो फिर 4 रकअतें आपने सुन्नत पढ़नी है, अगर आप घर आके पढ़ें तो फिर सिर्फ 2 ही पढ़नी होगी। इस तरह से आप अपना जुमा भी खास कर सकते हैं, स्पेशल कर सकते हैं जुमे की काम करके। तो इसको स्पेशल बनाएं, ये मुसलमानों की ईद का दिन है समझ लें। और सूरह कहफ पढ़ना ना भूलें, इसलिए कि सूरह कहफ जो है ना, इसकी वजह से कयामत के दिन इंसान को नूर नसीब होगा। देखें कयामत का दिन है ना, बहुत ज्यादा अंधेरे का दिन है, इतना एक मरहला होगा, इतना सख्त अंधेरा होगा, और उसमें नूर चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगी। और उस लाइट की जरूरत क्या है कि उसकी रोशनी में ही इंसान ने पुल सिरात को क्रॉस करना है। अगर लाइट नहीं होगी तो वो पुल सिरात कैसे क्रॉस करेगा, क्योंकि पुल सिरात पे भी अंधेरा है बिल्कुल। और पुल सिरात तो इतना बारीक पुल है कि बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, और उस पे अंधेरा है, उसके नीचे जहन्नुम जल रही है, जहन्नुम का शोर है, और उस पुल सिरात पे से भी कोई लोग गिर गिर के जहन्नुम में पड़ रहे होंगे। ऐसे में इंसान को सख्त जरूरत होगी कि उसके पास नूर हो। ये आज अमल शायद इतने बड़े ना लगे, आपको लगे तो क्या हुआ, पढ़ी नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अब हमसे नहीं पढ़ी जाती। देखें आज का दौर जो है ना, वो ऐसा दौर है जिसमें नेकी में, इताअत में भागना, ये कोई ऐसा शौक नहीं रह गया, ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं रह गया ना। हमें कोई ऐसे अपने इर्द गिर्द को बहुत नेक लोग नजर आते हैं जो नेकियों में भाग रहे हो। ऐसे जमाने थे जो, वो जमाने थे जो खैर के जमाने थे, सहाबा के जमाने, ताबईन के, तबा ताबईन के जमाने बहुत खैर के थे। उन जमानों के अंदर इर्द गिर्द ऐसे लोग होते थे जिनसे लोग मोटिवेट होते थे, जिनको ले देख के लोगों को नेकियों का शौक होता था। अब आपको नजर आएगा हर तरफ गुनाहों के अंदर चुस्ती, गुनाहों के अंदर दिलचस्पी, गुनाहों को और नाफरमानी के कामों में दौड़, और नेकी के कामों में सुस्ती, काहली, गफलत। अल्लाह अकबर। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होशियार और अकलमंद वो है जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया और मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी की, और अहमक है वो जो नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता गया और अल्लाह ताला पे उम्मीदें ही बांध के रखता गया। नहीं, उम्मीद पे ही चलता रहा हमेशा, उम्मीदें ही हैं बस, कि वो बस माफ कर ही देगा ना, तो हो ही जाएगा ना, तो हमारी वहां पे बेड़ा पार हो ही जाएगा, हम जन्नत में दाखिल हो ही जाएंगे, और ऐसा बस। अब आरजुओं और उम्मीदों के ऊपर लंबी लंबी उम्मीदें हैं। कुरान में है कि यहूद उम्मीदों के ऊपर जिंदगियां गुजारते थे, हम भी उम्मीदों पे ही लग गए, उसके ऊपर ही सब चीज उठा के रखी हुई है। दुनिया के कामों में उम्मीदों पे नहीं रहते कि अच्छा चलो मिलना होगा तो रिस्क मिल ही जाएगा, अच्छा कहीं बेहतरी होगी फ्यूचर में तो हो ही जाएगी। यहाँ के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना दौड़ते हैं, हालांकि हम इस दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए, इन हम भाग भाल के हर कान हो रहे हैं और आखिरत को हम भूले में। हालांकि इंसान सोचता नहीं है वो जब नया कपड़ा पहनता है कि शायद दिन के आखिर में मुझे कफन पहनना हो, और रात को पहने तो शायद सुबह से पहले मुझे कफन में डाल दिया जाए, ये सोचते नहीं हम। हम बस बेकार चीजों में अपना वक्त गुजार रहे हैं जिन्होंने काम नहीं आना, जिनमें ना दुनिया का फायदा ना कोई आखरत का फायदा। हमारे कितने घंटे उसमें गुजर रहे हैं, कितने दिन उसमें गुजर रहे हैं। हालांकि 40 साल की उम्र का तो इंसान हो जाए ना, तो इमाम इब्ने हब्बान का कौल है कि जब इंसान 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो आसमान से एक ऐलान करने वाला उसको पुकारता है कि दुनिया से कूच का वक्त करीब है, आखरत का सामान तैयार कर। लेकिन हम बस हर चीज जो भी नेकी का काम होता है उसके अंदर बस ऐसे ही बस कुछ मुसाते ही रहते हैं कि अच्छा कर लेते हैं, अच्छा कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे, और उसको इतनी अहमियत नहीं देते, इतनी उसकी तड़प नहीं रखते कि मैं तड़प जाऊं कि मैंने ये काम आज करना है, आज मेरी ये लिस्ट है, आज मैंने ये पूरा करके रहने। और देखिए ये वो दिन है ना, आजमाइशों के भी हैं, इम्तिहानों के भी हैं, फितनों के भी हैं, तो इसमें ऐसा ही होगा, इसीलिए इसका अजर ज्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम की इतनी प्यारी हदीस है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस वक्त वॉर्न कर दिया था, फरमाया था तुम्हारे पीछे कुछ दिन आ रहे हैं जो सब्र के दिन होंगे, आजमाइशों के, शिद्दतों के, इम्तिहानों के, तकलीफों के और फितनों के दिन आने वाले हैं। और साथ ही फरमा दिया कि इन अय्याम सब्र में जो शख्स उस चीज को थाम लेगा जिस पे आज तुम हो, यानी सहाबा कराम को आप फरमा रहे थे जिस पे आज तुम हो ना, जो शख्स इस चीज को उस वक्त थाम लेगा सबर के दिनों में, उसको उतना सवाब मिलेगा जितना 50 अफराद के अमल का सवाब होता है। 50 लोग अमल करें तो जितना उनको सवाब मिलेगा उस एक बंदे को मिलेगा। तो साहबा ने बड़ा एक ब्रिलियंट क्वेश्चन किया, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह 50 आदमी, हमारे 50 का सवाब उसको मिलेगा या उनके 50 का? यानी अगर साहबा कराम के 50 का मतलब तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साहबा कितने, उनके जो ईमान थे किस पाए के थे, और उनका अमल कितना जबरदस्त और कितने आला क्वालिटी का था। तो क्या हमारे 50 का या उनके जमाने के जो 50 लोग होंगे उनके बराबर का उसको एक बंदे को सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल मिनकुम, बल्कि तुम्हारे 50 के बराबर उसको सवाब मिलेगा। यानी जिस वक्त फेवरेट हालात नहीं है, फितने ही फितने, आजमाइशें ही आजमाइशें, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, उस वक्त जो इंसान अमल करता है उसके अमल का अजर भी बढ़ जाता है, उसके अमल के दर्जे भी अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं, सवाब भी बढ़ जाता है, 50 के बराबर उसको सवाब मिलता है। तो अगर हम उस जमाने में नहीं तो कम से कम उस जमाने के करीब तो जरूर है कि जिसके अंदर फितने हैं, आप हर तरफ देखें फितने हैं, नेकी की तरफ भागने वाले कम लोग हैं, बुराई की तरफ भागने वाले ज्यादा हैं, दुनिया की तरफ खींचने वाले ज्यादा हैं, आखरत की याद दिलाने वाले कम हैं, बुराइयां ज्यादा आम हैं, नेकियां कहीं कहीं नजर आती हैं, ईमान लोगों के बुझ रहे हैं, ज्यादा लोग शौक रखते हैं कुफर का, उनकी चीजों का, निफाक में लोग ज्यादा दिलचस्पी उनकी है, मुनाफकत वाले कामों में। तो ऐसे दौर के अंदर इंसान के जो वो अपने आप को नेकी की तरफ खींच के ला रहा है ना, क्योंकि फेवरेट हालात नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती अपने आप को लेकर आता है, नहीं मैंने ये करना है, मैं ये करूंगी, कैसे नहीं करना, अपने आप को इसके ऊपर आमादा करता है, वक्त को निकालता है, कोशिश करता है इसके लिए, मेहनत करता है कि भाई इतनी आसान नहीं है वो करना, नहीं जी हमारी जॉब है, नहीं हमारे बच्चे हैं, नहीं हम तो बिजी बहुत है, नहीं हम क्या करें, वो इन सारी चीजों से निकाल के अपने आप को करता है कि नहीं मैंने ये काम करना है, क्योंकि जिस चीज का इंसान इरादा कर लेना पक्का कि मैंने ये करना है, वो करके ही रहता है, फिर कोई चीज को रोकती नहीं है। फिर देखें आपका आज ये इरादा बन गया कि मैंने शॉपिंग पे निकलना है, भाई अब शॉपिंग पे निकलना है, हालांकि बहुत काम पड़े हुए, लेकिन आपने कहा हो ही जाएंगे, मगर आज मैंने ये चीज लेके ही आनी है घर पे, आप जाते हैं कि नहीं, का वक्त निकालते हैं कि नहीं? तो इंसान जब इरादा कर लेता ना पक्का, तो वो काम कर ही ले जाता है और अल्लाह ताला उसकी मदद भी करता है फिर। लेकिन जब खुद ही कसमुसाते रहे, नहीं ऐसे वो ऐसे, अपने ही अंदर बहाने तलाश करते रहे कि किसी तरह बच ही जाऊं मैं, ना ही करना पड़ जाए और कोई बहाना काम आ ही जाए, और उसी बहानों से खुद को सेटिस्फाई करते रहे, तो क्या काम कर सकेंगे बताएं? कुछ भी काम नहीं फिर हो सकता। तो लिहाजा इन नेकियों का शौक रखें, अपने आप को आमादा करें कि मैंने ये करना है, और ये हमारा प्रोग्राम भी इसीलिए रखा जाता है कि आपको शौक दिलाया जाए, आपको याद दिलाई जाए। देखो थोड़े दिन रह गए रमजान के, भी आधा रमजान तकरीबन हो गया, अब थोड़ा आधा रह गया, अब इसके अंदर भी अगर हमने स्पीड तेज ना की, रमजान में भी अगर हम नहीं अपने आप को काबू कर पाते और नेकियों के ऊपर दौड़ा पाते, तो फिर कब दौड़ाएंगे? अभी जब शैतान भी बंद, अभी जिस वक्त, इस वक्त हमारा नफ्स ही है जिससे हमने फाइट करना है, उस वक्त भी हम इसको नहीं टेम कर पाते, इसको नहीं काबू कर पाते, तो और कब करेंगे? तो लिहाजा इन दिनों को गनीमत जाने और इनमें बहुत सारी नेकियां इकट्ठी कर लें। बहुत चीजें आपको अपनी तरफ खींचेंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको इतना वक्त मिल जाए कि बस आप हैं और बस आपकी इबादत है और आप मजे से इबादत कर रहे हो। शायद ही किसी को ऐसा वक्त मिलता हो। किसी के साथ हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी के साथ बच्चों के काम है, किसी के साथ जॉब्स के हैं, किसी के साथ घरेलू और जिम्मेदारियां इसकी हैं, किसी के पास बुजुर्ग हैं घर में जिनको उनको देखना होता है, किसी के किसी तरह की मसरूफियात और ऐसी चीजें हैं जो जिम्मेदारियां हैं जो उसको निभानी है, उसके बावजूद वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करता है और शौक से इस तरफ आता है, तो उसका अजर कितना ज्यादा होगा। जो जितनी ज्यादा मुश्किलात के बावजूद टाइम निकाल रहा है और ये काम खुशू के साथ, शौक और मोहब्बत के साथ कर रहा है, उसका अजर उतना ही बढ़ जाता है। इसीलिए कामों की क्वालिटी एक जितनी नहीं है और कामों का अजर भी एक जितना नहीं होगा। आपका मतलब हम सब नमाज पढ़ते हैं सबका अजर एक जितना नहीं, हम सब रोजा रख रहे हैं सबका अजर एक जितना नहीं, हम सब जिक्र करेंगे सबके जिक्र का एक जितना अजर है नहीं, जब हम सब कुरान पढ़ रहे हैं सबके कुरान का एक जितना अजर है नहीं। हर एक का फर्क फर्क होगा, डिपेंडिंग ऑन वो किन हालात में कर रहा था, कितनी मेहनत कर रहा था। आपकी जितनी मुश्किल है आपके लिए करना, उतना ही ज्यादा आपका सवाब भी बढ़ जाता है। इसी तरह जितना आपका शौक है, जितनी आपकी मोहब्बत है, जितना आपका खलूस है, जितना आपका दिल उसमें लगता है, आपने दिल को लगाया वह हाजिर दिल करके फिर उसके बाद वो काम करते हैं, उतना ही आपका अजर भी तो ज्यादा है। तो मारे बांधे के काम ना करें, अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है हमारी इन छोटे छोटे कामों की, उसके पास बहुत फरिश्ते हैं उसकी इबादत करने के लिए। जो काम करते हैं शौक से करें, मोहब्बत के साथ करें और इस नियत के साथ करें, अल्लाह ताला तू राजी हो जाना, बस अल्लाह तू खुश हो जाना, बस अल्लाह तू खुश हो जाना, बस हर काम को ये कह कह के करें, इस काम में इतनी मेरी मेहनत लगी, इतना टाइम लग गया, बातें भी सुननी पड़ी, कभी कुछ किसी से बात सुननी पड़ गई, कभी किसी ने कुछ ताना दे दिया, नहीं अल्लाह ताला तेरी खातिर कर रही है। तो उस काम के दर्जात बहुत ऊपर हो जाते हैं, वो बहुत सारा आपको सवाब दिलाता है, पता नहीं कितने गुना हमारे उस नेक अमल की वजह से धुल जाए, हम नहीं जानते। तो इसी तरह सूरह कहफ को पढ़ना भी, चाहे अगर आपको लंबी भी लगती हो, लेकिन इसको ऐसे फालतू काम ना समझे। जब उस दिन पता चलेगा जब अंधेरा इस कदर होगा और हर एक को उसके अमल के मुताबिक नूर मिलेगा, किसी को पहाड़ के बराबर नूर मिल जाएगा, किसी को खजूर की शाख के बराबर मिल जाएगा, किसी को इससे कम, किसी का नूर इतना कम होगा कि उसके अंगूठे के आगे बस जल रहा होगा, दैट्स इट। और इसके साथ अगर पुल सिरात पे से गुजरना है तो सोचे, किसी का नूर अंगूठे के आगे कभी जलेगा कभी बुझेगा, थोड़ी से देर जलेगा तो वो चलेगा, फिर बुझ जाएगा तो वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, डेड स्टॉप। क्यों? इसलिए कि अंधेरा इतना वो चल ही नहीं सकता, इतना ज्यादा अंधेरा होगा, हर एक अपने अपने नूर के मुताबिक जा रहा होगा, उस दिन दिल नहीं करेगा हाय काश मुझे भी नूर मिल जाता, हाय काश मैं भी पढ़ लेती, ये कोई मुश्किल तो नहीं था, आज मुझे भी नूर मिला होता। ये सूरह कहफ की वजह से नूर मिलेगा। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जो लोग अंधेरों में मस्जिद की तरफ जाते हैं, यानी अंधेरे की कौन सी नमाजें होती, फजर की और इशा की, तो कयामत के दिन उनको पूरे नूर की खुशखबरी है। तो मर्दों को चाहिए कि वो मस्जिदों का शौक रखें, कम से कम फजर के वक्त तो किसी की जॉब नहीं होती ना, इशा के वक्त होती, उस वक्त तो जाया करें, अक्सरियत की तो नहीं होती ना, उस वक्त तो मस्जिद जाएं। और ये सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान के अलावा भी, वैसे भी जो इंसान देखें इशा जाके मस्जिद के अंदर पढ़ता है, जमात के साथ पढ़ता है, इमाम के साथ पढ़ता है, तो उसको आधी रात के कयाम का अजर मिलता है। कुछ लोग इशा पढ़ते नहीं है आके मस्जिद में और तरावी में शामिल होने के लिए लेट आ जाते हैं, चलो आ जाते हैं लेकिन उनको वो आधे कयाम का अजर नहीं मिलेगा। देखें आधी रात के कयाम का अजर कितना आसानी से मिल सकता है, आधी रात के, अब आधी रात तक हम में से कौन खड़ा रह सकता है कयाम में, लेकिन हमने अगर जमात के साथ इशा पढ़ी है तो हमें आधी रात तक के कयाम का अजर मिल गया। और जो फजर और इशा दोनों जमात के साथ पढ़ता है उसको पूरी रात के कयाम का अजर मिल गया। ये मुस्लिम की रिवायत है। देखें, कयामत के दिन नूर भी मिल गया फजर और इशा दोनों जमात के साथ पढ़ने की वजह से, मस्जिद की तरफ जाने की वजह से, और पूरी रात के कयाम का अजर भी मिल गया। अब हम में से कौन पूरी रात खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन कितने आसान अमल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से ना हमें बहुत सारे कामों में आसानियाँ मिल गई हैं। और ये छोटे छोटे काम, ये जो पिछली उम्मतों के लिए थोड़ी ऐसा था कि एक अमल करेंगे तो 10 के बराबर अजर, 70 के बराबर अजर, और बस ये छोटे छोटे कामों के ऊपर इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स के वादे, ऐसे थोड़ी ही था उनके लिए। हमारे लिए ये है, और फिर अभी हम ना फ़ायदा उठाएं, और रमज़ान में इसका अजर कितना और बढ़ जाएगा। ये तो रमज़ान के लिए, रमज़ान के अलावा की भी बात है, और रमज़ान में कितना अजर बढ़ जाएगा। इसी तरह जिसने अल्लाह की किताब में से एक आयत तिलावत की तो वो आयत उसके लिए नूर बन जाएगी। तो इन आयतों की तिलावत करें कि रात के वक्त भी आयत को तिलावत करके सोएं। इमाम इब्ने जौजी फरमाते हैं, जिस शख्स के पास कुरान मौजूद है उसको चाहिए रोजाना चंद आयत, चाहे चंद आयत हो मगर जरूर तिलावत करे, ताकि उसका शुमार गाफिलीन में ना हो जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए कयामत के दिन शिकायत करेंगे कि अल्लाह इन मेरी उम्मत में इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था। तो इमाम इब्ने जौज़ी कहते हैं थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ा करो हर दिन। तो इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा हमें, इसको हमें सीरियस लेना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि ये हमारी ज़रूरत है। और जो ये भी हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान की हालत में बूढ़ा हुआ उसको भी कयामत के दिन नूर मिलेगा। तो नूर पाने की बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह जो नमाजों की हिफाजत करता है, हम आजकल नमाजों के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, जो नमाजों की हिफाजत करता है उसके लिए भी कयामत के दिन नूर होगा, बुरहान और निजात होगी। अब नमाजों में भी अगर कोई एक छोड़ रहा है, कभी एक पढ़ ली, कभी दूसरी पढ़ ली, कभी इस तरह पढ़ ली, तो वो तो नहीं, लेकिन जो हिफाजत करे, यानी मैंने अपनी नमाज की हिफाजत करनी है, चाहे अब शॉपिंग डिले हो जाए, काम और डिले हो जाए, नमाज ना मेरी जाए, तो उसको हिफाजत करें तब भी नूर मिलेगा। तो सूरह कहफ पढ़नी है और हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इंसान कसरत से दुरूद भेजता है ना, तो वबाएं और दीगर मुसीबतें, इनके खात्मे का बहुत बड़ा सबब है ये। यानी अगर मेरी कोई तकलीफ है तो हम हर वक्त लोगों से पूछते हैं ना, आपको वजीफा बता दें। बहुत सारे मेरे पास भी क्वेश्चन आते रहते, कोई वजीफा इस चीज़ का बता दें, उस चीज़ का बता दें, इसी। अब भाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता देते हैं कि हमें दुरूद शरीफ पढ़ने से कितने सारे हमारे मसाइल हल हो जाते हैं, हत्ता कि मुसीबतें भी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर हमें इस चीज़ को सामने रखना चाहिए ना, ना कि हम इधर उधर वजीफे पूछते फिरें। और जब हमें कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, और आजकल तो मुसीबत परेशानी नहीं, तो अपनी हर हाजत के लिए हम रात को उठें, और रात को उठ के जो सहरी के बाद हमने उठना ही है, उससे थोड़ा पहले उठ के हम मुसल्ले पे बैठते हैं। आपको पता है सलफ सालेहीन जो थे, नेक लोग जो पुराने थे, वो रात को अल्लाह ताला के सामने सर गिरा के और हाथ फैला के खामोशी से बैठ जाते थे, ऐसे जैसे कोई मंगता फकीर होता है, ऐसे बैठ जाते थे। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी कुछ भी नहीं बोल रहे, बस हाथ फैलाए में सर गिराया हुआ है अल्लाह की रहमत को समेटने के लिए। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो ये तो कर सकते हैं ना, अल्लाहु अकबर। और एक रिवायत में आता है, अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला दो बंदों पे हंस देता है। एक वो बंदा है जो सर्द रात में बिस्तर और नरम गरम लिहाफ छोड़ के उठ के खड़ा हो जाता है, वुजू करता है और नमाज शुरू कर देता है। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरिश्तों से फरमाता है, ये मेरे बंदों को देखो, ये इस काम को करने पे इनको किस चीज़ ने उभारा, यानी अच्छे भले गरम नरम। अब देखिए सर्दी है, कई इलाकों में इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है, तो सर्दी की रात में उठना और ख़ास तौर पे उठ के वुजू करना, बाज़ दगह पे तो गर्म पानी भी नहीं आता, ठंडे पानी से ही वुजू करते हैं, और फिर खड़े हो गए मुसल्ले पे, तो कौन सी चीज़ है जिसने इनको ला के खड़ा कर दिया? वो कहते हैं हमारे रब, तेरे इनाम की उम्मीद ने और तेरी सजा के खौफ ने इनको खड़ा कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है, बस मैंने इसको वो अता कर दिया जिसकी उसने उम्मीद की, यानी अल्लाह के इनाम। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने इसको ये इनाम अता कर दिया और उससे बचा लिया जिससे उसने खौफ खाया, जिस पे वो डरा। अल्लाह अकबर। तो दो बंदों के लिए, दूसरा तो वो है जो लश्कर में था और फिर वो भाग भी सकता था और साबित कदम भी रह सकता था, लेकिन वो लड़ा और शहीद हो गया, तो उसके बारे में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन वो हमारी रीच से बाहर है, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं ना। तो जिस वक्त हम लेटे हैं, अब पता है कि सहरी के टाइम है, अभी तो काफी टाइम है, और क्या जरूरत है अभी से मैं उठ के बैठ जाऊं, अभी अभी मैंने क्या करना है, अभी सो जाती हूँ, वो लंबा दिन है मेरे पास, और ऐसे वैसे कई बातें। तो ये चीज ऐसी है, ये बात ऐसी है जो हमें खड़ा करते। उस वक्त सोचा करें, अल्लाह मैं तेरे इनाम की उम्मीद पे, तेरे जन्नत की उम्मीद पे मैं खड़ी हो रही हूँ अल्लाह, और मुझे तेरी सजाओं से डर लगता है अल्लाह। अल्लाह मुझे जहन्नुम से डर लगता है अल्लाह, मुझे तेरे अजाबों से डर लगता है, इस वजह से मैं खड़ी हो रही हूँ। अगर आपने ये सोच लिया ना, और आपको वाकई अगर शऊर है कि अल्लाह ताला की जो सजाएं हैं वो कितनी शदीद है, उसके अजाब कितने शदीद है, और अगर आपको वाकई शौक है ना अल्लाह की जन्नत में जाने का, तो आप जरूर खड़े हो जाएंगे, आप जरूर अल्लाह ताला की बारगाह में वुजू करके, सर झुका के, हाथ बांध के ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे कोई गुलाम हो, जैसे कोई फकीर होता। यकीनन फिर आपको ये आपका नफ्स बहका नहीं सकेगा, फिर आपसे लेटा नहीं जाएगा, फिर आपसे करवट बदल के दूसरी तरफ मुंह करके और सोया नहीं जाएगा, अगर आपके जहन के अंदर ये बात होगी कि मुझे अल्लाह ताला से उसका इनाम मांगना है और उसकी जो सजाएं हैं वो मुझे उनसे पनाह मांगनी है, मुझे उनसे बचाव करना है, ये टाइम है कि मैं बचाव कर लूँ, ये टाइम है कि मैं अल्लाह ताला की इनाम उससे मांग लूँ, और ये बड़ी कबूलियत का वक्त है कि इस वक्त के अंदर तो आसमान से निदा आ रही है, आसमान से पुकारा जा रहा है, कोई है मेरा बंदा जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसको बख्श दूँ, कोई है मेरा बंदा जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कोई है मेरा बंदा जिसकी कोई हाजत है तो मैं उसकी हाजत पूरी करूँ। वो उस वक्त जब ये निदा लग रही है, हम कैसे करवट बदल के सो सकते हैं? उस वक्त सोचें कि इस वक्त निदा लग रही है, इस वक्त कोई पुकारने वाला पुकार रहा है, इस वक्त अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे नजूल फरमा के मुझे पुकार है, और जब खड़े हो जाए मुसल्ले पे भी तो सोचें अल्लाह ये वो वक्त है कि जब तू पुकार रहा है, और अल्लाह मैं हूं वो जिसको बख्शिश चाहिए, और मैं हूँ वो जिसको अल्लाह ताला बहुत सारी जरूरियात है, जिसकी बहुत सारी हाजतें हैं जो सिर्फ तू पूरी कर सकता है, और अल्लाह मैं हूँ वो जिसके पास बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनको तू ही सिर्फ दूर कर सकता है। तो कैसे हो सकता है कि इंसान ना खड़ा हो, और कुछ भी नहीं आता दुआ करना भी, तो कम से कम सर झुका के और हाथ फैला के तो खामोशी से बैठ सकते हैं ना। तो ये दिन है, अपनी दुआओं को कबूल करवा लें, और ये आज का तो दिन में भी, रात में जिसको तौफीक अल्लाह ताला दे वो उठ सकता है, लेकिन जुमे की एक साथ तो ऐसी है ना जिसके अंदर दुआएं कबूल होती, तो हम उसके अंदर ही दुआएं मांग लें, उसमें ही अपनी ना सिर्फ ये कि दुनिया मांगे बल्कि आखरत में मांगे, और हम यही जो हम दुआ करते हैं अपनी नमाज में भी, तशहुद में भी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना तो वा फिल आखिरत हसना तो वा क़िना अज़ाब अन्नार, ये कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने किस हवाले से मेंशन किया है कि अल्लाह ताला ने ये दुआ यहाँ पे बताई हमें, और इस जिक्र के साथ कि जो दूसरे लोग थे ना मुशरिकीन, वो जब हज के लिए आते थे तो वो दुआएं करते थे, तो सिर्फ यही मांगते थे कि इस साल बारिशें अच्छी हो जाएं और हमारे यानी हमारे गल्ले अच्छे हों, हमारे बाग खूब पैदावार करें, औलादें हमारे ज्यादा हों, इस तरह की मतलब दुनिया की बातें। लेकिन अल्लाह ताला ने ना हमें सिखाई कि तुम जो है ना, जब तुम दुआ मांगो ना ए मोमिनो, तो तुम सिर्फ दुनिया की भलाई ना मांगना बल्कि आखरत की भी मांगना। तो इसलिए हम कहते हैं रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना, दुनिया की भी भलाइयां अल्लाह हमें दे दे। यानी दुनिया की भलाइयां क्या, हसना में क्या क्या आता है, इसमें सारी दुनिया की जितनी भलाई है ना वो सब जमा हो गई, और तमाम बुराइयों से बचाओ इसमें जमा हो गया, सब बुराइयों से बचाओ और सब तरह की भलाइयां एक वर्ड हसना में। दुनिया की भलाई में क्या क्या चीज आती है, यू नेम इट, आफियत भी इसमें है, राहत भी इसमें है, सुकून भी इसमें है, आसानियां भी इसमें है, सेहत तंदुरुस्ती भी इसमें है, घर बार भी इसमें है, बीवी बच्चे भी इसमें है, रोजी भी इसमें है, इल्म भी इसमें है, अमल भी इसमें है, तौफीक भी इसमें है, अच्छी सवारी भी इसमें है, नौकर चाकर भी इसमें है, इज्जत भी इसमें है, रिज्क भी इसमें, मतलब सारी भलाइयां, अल्लाह अकबर। और सारे जो यहाँ के शर हैं उनसे पनाह, उनसे बचाओ, और फिर आखिरत ही हसना में क्या है, हिसाब किताब आसान हो जाए, कब्र में का सवाल जवाब आसान हो जाए, कब्र कुशादा हो जाए, वो भी आखिरत है, कब्र कुशादा हो जाए, जब हशर के मैदान में खड़े हों तो वहां की घबराहट से निजात मिल जाए, उस दिन अर्श का साया मिल जाए, उस दिन आ, 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 हिसाब किताब आसान हो जाए, दाएं हाथ में नामा माल मिल जाए, पुल सिरात पे तेजी से गुजर जाए, सब चीजें इसके अंदर आ गई। और इन द एंड फिर दोबारा ये कहा गया कि अजाब नार से हमें अल्लाह ताला बचा लेना। और हाँ, हसना के अंदर सबसे बड़ी चीज जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाऊं और जहन्नुम की आग से अल्लाह बचा लेना। यानी फिर अल्लाह ताला फिर ऐसे सारे, यानी हमने वाके और ऐसे सारे चांसेस, ऐसे सारे असबाब मांग लिए जिसके जरिए से हम गुनाहों से बच जाएं और जिसके जरिए से हम नेकियां कर सकें, वो सारा कुछ मांग लिया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को इतना बकसरत पढ़ा करते थे, बहुत मांगते थे। और बल्कि आप देखें, जब हम तवाफ करते हैं उम्रे का, हज का या नफली तवाफ करते हैं, तो तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब कभी रुकन के पास से गुजरता, तो रुकन से मतलब क्या, रुकने यमानी, रुकने यमानी के पास से गुजरता हूं तो देखता हूं वहां एक फरिश्ता खड़ा है, वो आमीन कह रहा है, सुभान अल्लाह। तो तुम जब कभी यहां से गुजरो तो ये दुआ पढ़ो, इससे सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये वाली दो दुआ है ये सिखा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि बजाय कि तुम बहुत सारी दुआएं मांगो तो फरिश्ता आमीन कह रहा है, तो तुम फौरन सारी दुनिया की भलाई मांग लो और सारी आखरत की भलाई मांग लो। इस वजह से हम दुरूद शरीफ के बाद हम जितनी मर्जी चाहे दुआएं मांगे, आप जो मर्जी दुआ मांगे, मसनून मांगे, कुरानी मांगे, जितनी मर्जी मांगे, लेकिन ये एक दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को बकसरत मांगते थे। और हजरत अनस से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दुआ को सबसे ज्यादा मांगते थे, ज्यादातर मांगते थे, तो उन्होंने यही दुआ बताई थी। इस दुआ को फरमाया वो कभी नहीं छोड़ते थे, तो इसलिए हम नमाज में इस दुआ को मांगा करें, और ये दुआ हमें दुनिया में भी और आखरत में भी हर तरह की भलाई, और दुनिया में भी और आखरत में भी हर तरह की बुराई इससे निजात दिला देती है, और भलाई को हमें हमें उसकी हम मांग रहे हैं, भलाई हमें हम तक पहुंचा देती है। तो ये दुआ एक बहुत जामे दुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है, और इसमें बहुत सारी दुआएं जो आप मांगेंगे वो सारी इस एक में आ गई। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक दफा हजरत साबित ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हाँ, कुछ लोग थे तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए दुआ करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ की अल्लाहुम्मा के साथ, तो आप भी अल्लाहुम्मा के साथ इसको सजदे में भी मांग सकते हैं। तो आपने उनके लिए अल्लाहुम्मा के साथ अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया ऐसे करके मांगी। फिर कुछ देर बैठे और बातचीत करने के बाद जब जाने लगे तो फिर उन्होंने कहा अब आप फिर हमारे लिए दुआ करें, तो आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए सारी भलाइयों की दुआ कर तो दी है ऑलरेडी, तुम अलग अलग दुआएं कराना चाहते हो, मैंने तो सारी भलाइयां तुम्हारे लिए मांग ली हैं। इससे हमें ये बात अच्छी तरह पता चल जाती कि देखिए जब आपके पास वक्त ना ज्यादा हो तो फिर आप ये दुआ मांग लिया करें और कुर्बान जाए अपने नबी के ऊपर कि देखे वो जगह जहां पे देखा कि फरिश्ता खड़ा हो कि आमीन कह रहा है, फौरन हमें ये दुआ बता दी कि ये बस मांग लो, क्योंकि उतनी देर में आप गुजर भी जाएंगे, वहां से गुजर भी जाएंगे, तो इतनी देर में आप ये मांगते जाएं तो आप रुकने यमानी से हिजरे अस्वद तक के दरमियान बस यही, इसीलिए जो तवाफ करने वाले थे यही दुआ मांगते, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। तो हम देखिए हमने तशहुद के अंदर हमने क्या क्या किया, हमने पहले तशहुद में बैठ के हमने अत्तहियात पढ़ी और उसके अंदर हमने अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही दी जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, ये हम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और दुनिया जहान में जितनी भी नेमतें हैं ना, जितनी भी नेमतें उनमें महंगी तरीन नेमत ये है और कीमती तरीन नेमत ये, किस तरह मैंने कहा महंगी तरीन, इसलिए कि कुरान में आया कि कयामत के दिन काफिर को लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा अगर जमीन भर के सोना तेरे पास हो तो क्या तू वो दे देगा आज फिदिये में, वो कहेगा हाँ मेरे से जमीन भर सोना ले लो लेकिन मुझे आज इस अजाब से खलासी दे दो। इसका मतलब है कि महंगी तरीन नेमत जो है ना, सोना सोना महंगा नहीं है, हम कहते हैं ना सोने की प्राइस बढ़ गई, सोना महंगा नहीं, महंगी तरीन नेमत ये अकीदा तौहीद है, ये अकीदा तौहीद है जिसकी हम गवाही देते हैं तशहुद में भी और जिसका मैंने जिक्र भी आपको बताया था, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वो हमने पढ़ा था और हमने इसमें भी अतहियात में भी गवाही दी है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त उनसे कहा जाएगा उस बंदे से कि तुझसे दुनिया में इसे तो बहुत आसान चीज मांगी गई थी, तूने वो भी नहीं दी, यानी तुझसे तो ये सिर्फ कहा गया था कि तौहीद पे ईमान रख, तौहीद की गवाही दे दे, तूने वो नहीं दिया, आज तो पूरा जमीन भर के सोना देने के लिए तैयार है, वो भी नहीं उसे लिया जाएगा, ये कलमा है तौहीद नहीं था, इसीलिए वह यकूल काफिर या लैतनी कुंतु तुराबा, उस दिन काफिर कहेगा हाय काश मैं मट्टी हो जाता, जब सारे जानवरों को देखेगा मट्टी हो रहे होंगे तो कहेगा काश मैं भी मट्टी हो जाता। तो इसलिए ये तौहीद का कलमा बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, मैंने आपको बताया भी था कि ये शैतान की कमर तोड़ने वाला कलमा है, इसकी विरद करते रहा करें, और फिर दुरूद शरीफ और उसके बाद ये दुआएं जो हम मांगते हैं, और कुछ दुआएं ऐसी हैं जो तशहुद के वक्त के लिए खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जब बचपन से सिखाया जाता है ना तो हमें एक रब्बी जाली मुकीमत सलाती ये वाली दुआ सिखाई जाती है और एक रब्बना आते ना बस दैट्स इट, बस ये दो दुआएं मांग लो उसके बाद बस सलाम फेर दिया करो, और जो असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई तशहुद के लिए वो हमें बताई ही नहीं जाती, सिखाई ही नहीं जाती, ये नहीं कि ये दुआएं ना आप नहीं मांगे, रब्बना आते ना वाली भी मांगे, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती वो भी मांगे, वो भी बहुत अच्छी दुआ है, वो सूरह इब्राहिम में और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है, और उसमें भी क्या है हम जैसे कहते हैं ना बस ये नमाज नमाज पे मैं कायम नहीं रह पाती है, बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको नमाजी बना दे, तो आपको पता है कि जो ये दुआ आप रब्बी जालनी मांगते हैं उसके अंदर तो आपने ये दुआ भी मांग ली, कितनी प्यारी दुआ है रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, ए अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, वह मिन जुरियती और मेरी औलाद में से भी, यानी ऐसे लोगों मेरी औलाद में कि जो नमाज कायम करने वाले हों वो भी नमाज को कायम करें, तो आपने उनके लिए नमाजी होने की दुआ मांग ली ना, रब्बना व तकब्बल दुआ, ए हमारे रब हमारी दुआओं को कबूल कर ले, रब्बना गफिर ली, ए अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, वली वालिदैया और अल्लाह मेरे वालदैन की भी बख्शिश कर दे, बाप के वालदैन चाहे जिंदा है चाहे वो दुनिया से जा चुके हैं लेकिन आपने इतनी प्यारी दुआ के जरिए उनकी भी बख्शिश मांग ली, वलिल मोमिनीन अल्लाह सारे मोमिनों की बख्शिश कर दे, यौम यकूमुल हिसाब हिसाब के दिन, और क्या आप जानते हैं जब आप किसी के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं गायबाना खास तौर पे जो दुआ की जाती है वो तो आप किसी मुसलमान के लिए करें तो वो कबूल होती है, मैं कल आपको बताऊंगी इंशाल्लाह वो ताला के आप कौन सी वो दुआएं हैं कौन से वो काम हैं जिनकी वजह से आप फरिश्तों की दुआएं ले सकते हैं। तो जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ता आपके लिए दुआ करता है कि अल्लाह इसको भी ये सब अता फरमा, जो भी इसने किसी के लिए मांगा। और फिर जितने लोगों के लिए आपने दुआएं मांग ली, आपने मिसाल के तौर पे अब आपने कहा कि या अल्लाह कुल मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए सबको बख्श देना, या अल्लाह सबको बख्श देना। तो जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश का तलबगार हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन मर्द और हर मोमिना औरत के बदले में एक नेकी लिख देता है। यानी जब हमने कहा ना रब्बना फिर ली वली वालिदै वलिल मोमिनीना, अल्लाह मोमिनों को भी बख्श देना। तो देखिए इस हदीस से हमें पता चला जितने मोमिन है, अगर इस वक्त दुनिया के अंदर मसलन 1 बिलियन मोमिन है, तो 1 बिलियन नेकियां मर्द औरत सारे मिला के, तो 1 बिलियन नेकियां मेरे खाते में लिख दी जाएंगी, क्योंकि मैंने उनके लिए बख्शिश का सवाल किया। क्योंकि हमें ये हदीस बताती है कि जब इंसान मांगेगा उनके लिए बख्शिश, तो अल्लाह ताला इसको भी एक नेकी दे देगा। तो हम अपने लिए भी मांग रहे हैं। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम की भी दुआ आती है ना सूरह नूह में, रब्बना फिर ली वली वालिदैय वली मन दखल बैतिय मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। उन्होंने भी मोमिन मर्दों और औरतों के लिए सबके लिए दुआ मांगी थी। तो ये दुआएं तो दो, रब्बना आतिना और रब्बी जालनी, ये दो तो हम मांगते ही हैं। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये बताऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआएं मांगने को हमें बताया, कि वो वाली दुआएं तुम अपने तशहुद में मांगा करो। जाहिर है वो जरूरी दुआएं होंगी जो खास तौर पे आपसे ने फरमाया कि अपने तशहुद में मांगा करो। तो आज की दुआ भी हमने सीख ली कि ये दुआ हम मांगे अल्लाह ताला से, रब्बना आतिना की, और हमने आज का जिक्र भी सीख लिया कि हमने दुरूद शरीफ बहुत ज्यादा पढ़ना है। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।